हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 16। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए अत्यंत ही पवित्र और अद्भुत शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः आदित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः आदित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। शब्दों का अर्थ, ज्ञानेन अर्थात ज्ञान से, तु लेकिन, तद वह, अज्ञानम अर्थात अविद्या, येषां नाशितमात्मना, येषां जिनका नाशितम नष्ट हो जाते हैं, आत्मनः जीव का, तेषां आदित्यवज्ज्ञानम तेषां उनके आदित्य वत अर्थात उदीयमान सूर्य के समान, अज्ञान ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, प्रकाशयति तत्परम प्रकाशयति अर्थात प्रकट करता है, तत्परम यानी कृष्ण भावनामृत को। अनुवाद, किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश हो जाता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सर्वं ज्ञान प्लवेनैव ज्ञानेन सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम्। यानी ज्ञान सदैव सम्मान्य है, और वह ज्ञान क्या है, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में कहा गया है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म लिए जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त हो सकता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से भरा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होता है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही हम किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो सकता है, भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो सकता है कि वह शरीर नहीं है अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 में कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति में भी व्यष्टि हैं और भविष्य में भी मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु किसी एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपरान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातं सह गणरघुनाथं वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सह गणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता माता की जय हो। अत्यंत ही सुंदर टॉपिक चल रहा है। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि वास्तव में कर्ता कौन है। वास्तव में भक्तों, ये कर्ता यानी कार्य जो है वही हमारे बंधन का कारण बनते हैं। तो अगर वो कार्य हमें पता चल जाए कि हम नहीं कर रहे हैं तो हमें कभी भी बंधन नहीं पड़ेगा। लेकिन इस संसार में इतने सारे लोग रहते हैं, जब सारे लोग रहते हैं संसार में, परंतु सब लोग कार्य करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कार्य करते हैं और बहुत सारे लोग को कर्म बंधन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। अब उनको पता नहीं होता है तो भले कोई माने या ना माने, परंतु कर्म बंधन में फंसना तो पड़ रहा है ना, उनको दुख तो आते हैं। जीव दुखी हो रहा है, इस बुद्धिमान व्यक्ति जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो ये सोच सकता है कि उसका कुछ तो कारण होगा। मुझे इतनी तकलीफ मिल रही है और दूसरों को इतनी तकलीफ नहीं मिल रही है, या मेरे पास ये सब कुछ नहीं है जो दूसरों को मिल रहा है, तो इसका क्यों हो रहा है, ये कर्म का चक्कर है। तो भले वो मानता या ना मानता, इस संसार में आप अच्छे से अच्छा कार्य करते हो, अगर बहुत ही सुंदर कार्य करते हो, उसके बदले में आपको क्या मिलता है? अच्छा घर, अच्छा जन, अच्छा पति, अच्छा धन दौलत, खूबसूरत शरीर, ये सब मिलता है। क्यों? क्योंकि पुण्य किए हैं। लेकिन पुण्य करने के बाद भी आप मुक्ति तो नहीं प्राप्त कर रहे हो, जन्म तो हो रहा है, जीव को गर्भ में आना पड़ रहा है। इसका मतलब है कर्म बंधन की श्रृंखला खत्म नहीं हुई। जन्म के बाद मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब जीव को भुगतने पड़ रहे हैं, यही तो कर्म का बंधन है। तो भले कोई माने या ना माने, कर्म का बंधन तो सबको लग रहा है। तो ये अगर कोई जान लेता है कि ये जो भगवान आज हमें बता रहे हैं, ज्ञाने न तो तदज्ञानम येषां नाशितमात्मना, तो उसके जरिए क्या होगा कि हमारी सब अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। वास्तव में जीव इस संसार में आया है परंतु उसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, है ना। देखो जीव, अब जैसे हमने कल पढ़ा कि तीन कर्ता है, कौन कौन से? एक तो खुद जीव, क्योंकि इस शरीर के अंदर आ गया है और शरीर ने, इसके अंदर जो गुण है उन्होंने जीव को कवर कर दिया है, और अज्ञानता के कारण वो सोचता है कि भौतिक वस्तुओं से आनंद प्राप्त होगा, इसके लिए वो कार्य कर रहा है। एक आत्मा, दूसरा क्या? प्रकृति। प्रकृति कब कर रही है? जब भगवान उसको आदेश दे रहे हैं, है ना। प्रकृति भी कार्य है, जैसे कल हम लोगों ने ड्राइवर वाली मिसाल दी थी और वो वाला एग्जांपल दिया था ना जज का, है ना। जज जब तक एग्जीक्यूटर्स को नहीं बोलता है तब तक वो अपराधी को नहीं मारते हैं। इसी तरह से जब तक भगवान नहीं, अब जैसे कोई बैटमैन होता है, ठीक है, और क्रिकेटर होता है, बहुत अच्छा बैटमैन होता है और बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी करता है, और जब वो मैच खेल रहा होता है तो कभी कभी क्या होता है, वो सेंचुरी मारता है। लेकिन कभी कभी वही बैट्समैन होता है उसी तरह से सिंसियर खेल रहा होता है, उसने बहुत प्रैक्टिस भी की होती है, तो पहले बॉल पे आउट हो जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उस वो जो कार्य कर रहा है, अब वो खुद नहीं कर रहा है, अकेले वो करता नहीं है। अगर वो स्वयं खाली वही कार्य करता तो वो कभी आउट नहीं, लेकिन क्योंकि प्रारब्ध उसके साथ है ना, तो जो परमात्मा है वो भौतिक प्रकृति को तब आदेश देता है जब यू डिजर्व दैट, आप प्रयास करो, और भगवान उसके लिए, अब कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई लोग बहुत 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 प्रयास करते हैं लेकिन वो धन प्राप्त नहीं कर पाते। इसका मतलब है वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन पिछले कर्मों के अनुसार उसको वो धन प्राप्त होने वाला ही नहीं है तो वो नहीं करते, तो ये कर्म बंधन जो है वो कभी भी जीव का पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि अकेले जीव करता नहीं। वास्तव में जीव और प्रकृति में डायरेक्ट से कोई संबंध नहीं। कोई बोले ना, जीव भले इस प्रकृति में रह रहा है परंतु उसका इस शरीर के साथ कोई भी डायरेक्ट से संबंध नहीं है। जीव का संबंध केवल और केवल भगवान से है। इसलिए जब तीन कर्ता बताया ना हमें, कल हमने तीन कर्ता के ऊपर चर्चा की, तो जब जीव कार्य करता है तो भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं, उसके अनुसार प्रकृति जो है उसकी सहायता करती है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीव, जैसे ये मेरा हाथ है, हमें श्री प्रभुपाद जी इस तरह की मिसाल देते हैं कि मेरा हाथ है, भले मैं इसको बोलता हूँ मेरा हाथ है, लेकिन ऐसा दिखता भी है कि मेरे आदेश अनुसार वो कार्य कर रहा है, लेकिन ये मेरे आदेश अनुसार कार्य तब कर रहा है जब परमात्मा की रजामंदी होगी, परमात्मा उसको इजाजत देंगे। लेकिन यदि इसी हाथ को, मेरे शरीर को पैरालाइज हो जाता है तो भगवान उसको आदेश नहीं देते हैं, वो कार्य नहीं करता। ऐसे इतिहास में एक बहुत ही बड़े बॉक्सर, मतलब वो खेलते ना बॉक्सिंग खेलते, मोहम्मद अली किल्ले, तो वो क्या सोचते थे कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। मतलब वो कभी भी बॉक्सिंग में हारते नहीं थे, ब्लैक बेल्ट और रेड बेल्ट सब उसके पास थे, और कभी भी वो सोचते थे कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और ऐसे करने के बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो क्या कहता था कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और कुछ समय के बाद उसको जब पैरालाइज हो गया, पूरा शरीर उसका काम करना बंद हो गया, वो चाह रहा था, कार्य नहीं कर सकता था, कोई भी काम नहीं कर सकता था, तो फिर क्योंकि वो हमेशा बोलता था मैं ग्रेट हूँ, तो बोला उससे जाकर कुछ जो रिपोर्टर्स होते ना, उन्होंने पूछा अब आप क्या बोल रहे हो, तो बोला आई एम ग्रेट। सब हैरान हो गए कि अब कैसे ग्रेट है ये, तो बोला आई एम ग्रेटेस्ट फूल, मैं तो बहुत बड़ा फूल हूँ जो ये सोच रहा था, यानी मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं अपने आप को कर्ता सोच रहा था, लेकिन वास्तव में कर्ता में था ही नहीं कभी कर्ता। तो ये यहाँ पर भगवान ने तीन कर्ता के विषय में बताया। अगर हम लोग 18वें अध्याय के पांच श्लोक में पढ़ेंगे तो भगवान बताएंगे कि पांच कर्ता है, तो वो ये जो बाकी के दो जो है वो इन्हीं का विस्तृत रूप है, वो जब आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर वास्तव में क्या है कि कर्ता हम अकेले नहीं, जब जीव को ये ज्ञान हो जाएगा कि मुझे जो भी सुख और दुख मिल रहे हैं वो मेरे कार्यों के कारण मिल रहे हैं, मेरे कर्मों के कारण मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए कि मुझे दुख ना मिले, है ना। मैं कोई ऐसा कार्य करूं कि मुझे दुख नहीं मिलने चाहिए। वास्तव में जो अनुभव होता है ना, ये जो शरीर को कष्ट मिलता है उसका अनुभव कौन करता है। अब देखो, शरीर तो प्रकृति जो है वो तो निर्जीव है, उसको अनुभव नहीं हो रहा है, और मन क्या है, मन थिंकिंग फीलिंग और विलिंग, मन खाली इच्छा करता है, वो महसूस करता है। लेकिन यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि मन अगर निर्जीव है, जड़ है, तो वो कैसे महसूस कर सकता है। वास्तव में भक्तों, मन जो है वो भले ही निर्जीव है परंतु वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म है तो क्या है, जैसे ऐसे इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर होता है वो निर्जीव है, उसको कुछ खबर नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं है, लेकिन 55 वर्स नंबर 16 सेकंड पार्ट थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम मन के विषय में बात कर रहे थे कि मन भले ही निर्जीव है परंतु वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। जैसे कंप्यूटर जब कोई ऑन करता है तो कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो निर्जीव है, वो भी जड़ है, लेकिन उसके अंदर सारे प्रोग्राम्स खुद ब खुद ऑन हो रहे हैं। खाली आपने बटन ऑन कर दिया तो जो पूर्व कर्मों के अनुसार, यानी पहले जो जो कार्य किए हैं उसके अनुसार उसके अंदर जो जो डेटा है वो खुद ब खुद आएगा और आपको बोलता जाएगा कि है ना ये कार्य अब करूं, इसको डिलीट करूं। अब उसके पास तीन ऑप्शन आते हैं, यस, नो और लेटर। तो अब इसी तरह से मन क्या है, वो भी बार बार उसके अंदर जैसे पूर्व कार्यों के अनुसार खुद ब खुद एक परिक्रिया हो रही होती है कर्मों के पूर्व, जितने भी हमारे कर्म है उनके अंदर परिक्रिया, पहले से जो प्रोग्राम किया हुआ है, जैसे उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कैसे प्रोग्राम फिक्स है, उसी तरह से मन के अंदर भी प्रोग्राम फिक्स है। तो फिर उसके अंदर, लेकिन मन कुछ कर नहीं सकता, मन खाली आपको बोलेगा ये करना है, अभी अभी इंद्र तृप्ति के लिए करना है ये, या फिर अभी आपको भगवान की जैसे समय होगा, जैसे अब आपको क्लास में जाना है तो वो बोलेगा क्लास में जाऊं, या फिर है ना सिनेमा जाऊं फिल्म देखने के लिए, या फिर घर पे ही बैठा रहूं, तो तीन चीजें आएंगी। फिर उसके नीचे है ना यस और नो या लेटर, इस तरह का, ये नहीं बाद में करेंगे, इस तरह ये आता है। यानी कि वास्तविक अनुभव सिर्फ हमारे शरीर में सिर्फ एक आत्मा ही है जो अनुभव कर सकती है, क्योंकि वो सजीव है, वो एक्टिव है, आत्मा ही खाली महसूस कर सकती है। तो वो अनुभव कैसे कर रही आत्मा, अब भौतिक प्रकृति से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, फिर आत्मा क्यों भौतिक सुख दुख को अनुभव कर रही है। इसके लिए मैं एकदम सुंदर सी मिसाल देती हूँ आपको, एकदम सुपर स्वीट एग्जाम्पल है कि जैसे टीवी है, टीवी के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, उसके अंदर जो नायक है, जो नायिका है, या जो खलनायक है, जो भी है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप टीवी ऑन करते हो और उसके अंदर जो कुछ प्रोग्राम हो रहा है, आप अपना कॉन्शियसनेस उसके अंदर डालते हो, यानी इतना कॉन्शियसनेस के साथ आप उसको देख रहे होते हो कि आप समझते हो उस सबको महसूस कर रहे होते हो। आप दुख हो रहा होता है तो रोना आता है, सुख उसी हीरो को यदि सुख मिलता है तो खुशी होती है, हीरोइन को यदि कोई मार पड़ती है या फिर है ना कुछ उसके साथ उल्टा सीधा, हालांकि वो सब झूठ है, नाटक है, उसमें कुछ सत्य नहीं है। आपको पता भी है कि सत्य नहीं है, लेकिन जब आप उसके अंदर पूरा खो जाते हो तो फिर आपको वही महसूस हो रहा होता है। भले ही जैसे आप एयर कंडीशनर रूम में बैठकर और बहुत ही अच्छी एक सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्ट चेयर पर बैठकर आप टीवी देख रहे हो, पलंग पर बैठकर मजे से, लेकिन अगर आप हॉरर मूवी देख रहे हो तो आपकी चेतना सेटिस्फाई, वो कंफर्टनेस फील नहीं कर रही है, बल्कि वही डर, वही खौफ, वही आप सब महसूस कर रहे होते हो, आप उसको कष्ट को महसूस कर रहे होते हो। उसी तरह से ये भौतिक प्रकृति जो है उससे आत्मा को कोई संबंध नहीं, लेकिन क्योंकि आत्मा जो है वो इस भौतिक प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ देती है। बहुत ही सुंदर भगवान बताते हैं 13.22 में, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुरु संगोस्त सदसत योनि जन्म। पुरुष प्रकृति स्थो ही, पुरुष यानी ये जो जीव, जीव जो टीवी देख रहा है, ठीक है, प्रकृति क्या है, टीवी है, और उसके अंदर स्थित हो जाता है, फिर क्या करता है, भुंक्ते प्रकृति जान, जो कुछ प्रकृति में हो रहा है यानी जो टीवी में हो रहा है वो अपने उसी को अनुभव कर रहा होता है, हालांकि उससे उसका कोई सरोकार नहीं होता है। उसी तरह आत्मा का इस भौतिक प्रकृति में किसी भी कार्य में कोई भी कोई सरोकार नहीं, किसी से कोई संबंध भी नहीं है, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसी प्रकृति का अपने आप को हिस्सा मान लेते हैं और प्रकृति के अंदर अपने आप को जकड़ लेते हैं और समझते हैं कि मैं ही ये प्रकृति हूँ, वो यही समझता है कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर से रिलेटेड सारी वस्तुएं जो है वो मेरी हैं, तो वो जब सब प्रसन्न होती है तो फिर प्रसन्न होता है, जब सब दुखी होता है तो दुखी होता है। तो परंतु यदि आप टीवी देख रहे हो और आपके बाजू में आपका मित्र बैठा हो और वो बोले, वो आपको उठाए, बोलो क्या, क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों रो रहे हो, ये सब झूठ है, लेकिन फिर भी आप इतना खोए हुए हो टीवी में, आप है ना फिर भी उसकी बात नहीं सुन रहे हो, तो फिर वो क्या करता है कि अगर वो बहुत ज्यादा आपसे सिंसियर है और उसके अंदर बहुत सारा पावर भी है, तो वो क्या करता है, अपनी एक शक्ति, अपने अंदर से एक शक्ति निकालता है और वो खोजता है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, फिर वो वहां पर जाकर अपनी एक शक्ति को भेज देता है और उसी भौतिक प्रकृति के अंदर ही वो आ जाता है और वो आपको उसी टीवी में ही, जैसे आप समझो उसी प्रकृति में, आप उसमें अपने आप को समझ रहे हो और उसमें आकर वो आपको बताता है कि ये सब झूठ है ना, ये सब तो झूठ है, आपका वास्तविक फ्रेंड जो आपके साथ बैठा हुआ है वो है। तो इसी तरह भगवान क्या कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो, है ना। ये ज्ञान हमें केवल वही बता सकता है जो वास्तव में भगवान को जानता है। तो भगवान को कौन जानता है, भगवान को केवल स्वयं जानते हैं, और भगवान को खुद भगवान जानता है, और ते ही जाने जेहो जान देहो जनाए, जो गुरु जो सत्य गुरु जो शुद्ध आत्मा जिनको जो भगवान जिनको चाहते हैं उन्हीं को अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बताया है तात्पर्य में कि वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावना भावित क्या है, है ना। तो ऐसा भगवान किसी न किसी को भेजते रहते हैं आपके अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए, और हमें क्या करना है, उसको खोजना है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या दूर हो जाती है, और जिस प्रकार सूर्य से अंधकार, अब देखो संसार में सूर्य कभी नहीं अंधकार में फंसता है, अंधकार में तो जीव फंसता है, लेकिन जब अंधकार सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट होता है, फिर जीव को सब कुछ क्लियर नजर आता है। उसी प्रकार जब कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यानी गुरु महाराज की शरण में जब हम जाते हैं तो सारा अज्ञान का अंधकार, अज्ञान क्या है कि जीव ने अपने आप को प्रकृति का हिस्सा समझ लिया है, जिसके कारण उसको दुख मिल रहे हैं, दुखों को भोगना पड़ रहा है, पापों को भोगना पड़ रहा है, लेकिन ये अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं है अपितु इसे परे है, तो वो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर सके। अब यहाँ पर दो ज्ञान बताए श्री प्रभुपाद ने, एक तो आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा परमात्मा का ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है कि मैं अपने आप को आत्मा समझता हूँ, शरीर नहीं समझता, ठीक है, ये इतना जान ले। लेकिन वो क्या सोचता है कि फिर भी जब अपने आप को आत्मा समझता हूँ तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि मैं भी भगवान बन जाऊंगा, मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें चेतावनी दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि किंतु अगर कोई ये सोच भी लेता है कि मैं आत्मा हूँ अपितु उससे परे है, आत्मा जो है वो शरीर से परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा के अंतर को नहीं। अब देखो आत्मा का ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, उससे क्या होगा कि आप कर्म के बंधन को रोक दोगे। जैसे आपको पता चल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, अभी मैं कार्य नहीं करूंगा, प्रकृति ही कार्य कर रही है, और फिर एकदम गुणा गुणेश वर्तन थे, प्रकृति के कार्य हो रहे हैं, तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं। लेकिन जब तक आप ये नहीं सोचोगे भगवान का दास हूँ और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता हूँ, तब तक आप पिछले कर्मों के प्रभावों से नहीं छूटोगे, है ना। भगवान कहते हैं तो मेरी शरण में आओगे तभी मैं आपको पिछले कर्मों के समस्त अपराधों के समस्त फलों से मुक्त कर दूंगा। तो ये ज्ञान अत्यधिक आवश्यक है कि भगवान के साथ कर्म योग करना है। काली ये ज्ञान प्राप्त पर्याप्त नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा के बाद भगवान के स्तर को समझना है। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो उसे वह सब कुछ जान सकता है, क्योंकि वो स्वयं जानता है कि मैं भगवान का दास हूँ, समस्त जितने भी जीव है वो भगवान के दास है, और जीव को तभी संतुष्टि प्राप्त हो सकती है जब वो भगवान की शरण में जाता है और भगवान जो भी कार्य करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। क्योंकि भगवान क्या करता है, आपकी इस मोहग्रस्त अवस्था को देखकर अपना एक प्रतिनिधि संसार में भेजता है। तो जब कृष्ण की असीम कृपा होती है ना, तब कोई शुद्ध गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, और फिर जब शुद्ध गुरु से भेंट हो जाती है तो हम भगवान के साथ अपने संबंध को, क्योंकि वो उसी प्रकृति में आया है, उसी संसार में आया है और आपको बता रहा है कि तुम इस संसार से कुछ भी रिलेशन नहीं रखते हो, तुम्हारा जो दोस्त तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, जो तुम्हारी हर दुख सुख में तुम्हारी सहायता करता है, जो सदैव तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारा केवल उसी से नाता है। तब जब हम ऐसे भगवान के प्रतिनिधि के साथ जब हमारी भेंट होती है, तभी हम भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं समझता, यद्यपि उसका समान उसका सम्मान ईश्वर के ही बांधे किया जाता है। भले हम भगवान गुरु को भगवान के बराबर ही आदर देते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अब भले ही कोई कितना ही लिबरेटेड सोल हो, वो भगवान के बराबर नहीं हो सकता है, वो भगवान का दास होता है। इसलिए यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी ने 2.12 के विषय में बताया है, जिसमें क्या बताया भगवान ने, न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। कि ना तुम ना मैं, और ना ही कभी ऐसा था कि ये सारे राजा नहीं थे, यानी कि कोई भी सब इटर्नल सोल हैं, वो सदैव से हैं, और कभी भी ऐसा भी नहीं होगा कि भविष्य में ये नहीं रहेंगे, यानी अभी भी वो व्यष्टि आत्मा। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने क्या कहा, व्यष्टि थे, भूतकाल में भी व्यष्टि थे, संप्रति में भी व्यष्टि हैं, और भविष्य में भी मुक्त होने के बाद भी व्यष्टि बने रहे। व्यष्टि का मतलब होता है उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं होती है, वो फिर भी इनफरादी आत्मा बने रहेंगे, वो कभी भी भगवान से मिलकर एक नहीं। वो भूतकाल में भी, यानी पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कभी भी भगवान नहीं बनेंगे, वो सदैव भगवान के दास बने रहेंगे, चाहे वो भले मुक्त आत्मा लिबरेटेड सोल ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो एक अलग, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, वो कभी भगवान से मिलते नहीं है, मतलब भगवान से मिलकर एक नहीं होते। तो यहाँ पर हम भगवान क्या बताते, ज्ञानेन तु तदज्ञानम्, यानी कि ये जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो जो अज्ञान है, येषां नाशितम् आत्मनः, तो वो जो अविद्या है, अज्ञान जो है, उस ज्ञान से नाश हो जाता है। अविद्या अज्ञान क्या है, कि मैं शायद इस प्रकृति का हिस्सा हूँ, लेकिन जब गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ये अज्ञान भी नष्ट हो जाता है कि मैं प्रकृति का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये अज्ञान भी नष्ट हो जाता है कि मैं कभी भगवान से मिलकर एक हो जाऊंगा। और उसके बाद क्या होता है, तेषां आदित्यवत् ज्ञानम्, आदित्यवत् मतलब उदीयमान सूर्य, जैसे जब उपाधि बहुत सुंदर बताते हैं कि जब सूर्य नहीं होता है, तो फिर जीव जो है, हमारे पास आंखें भले हों, लेकिन यदि प्रकाश नहीं मिलेगा उसको, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब वो तो अभी, लेकिन पहले यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, तो फिर आंखें खुली होते हुए जीव को कुछ नहीं दिखेगा, है ना। अगर कोई भौतिक, क्या हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि वो नहीं देख सकती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश होने के बाद हमें सब कुछ, वो अभी अंधकार होगा तो कभी वो गिरेगा, कभी उसको लगेगा, कभी जख्म होगा, कभी किसी से टकराएगा, लेकिन जब सूर्य उदय हो जाएगा, फिर क्या होगा, प्रकाशयति तत् परम। तत् परम, परम का मतलब होता है वो वास्तविक ज्ञान, जो कृष्ण भावना भावित होता है जी, उसको फिर ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। असल में वस्तु यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी है, वो समझनी चाहिए कि आत्मा, ये जो आत्मा के साथ भगवान का जो संबंध है, वो कोई आर्टिफिशियल संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अभी जीव के अंदर उसको डाला जाएगा कि ये नया संबंध हमारा किसी के साथ निर्माण करना है। आत्मा नेचुरली भगवान का अंश है, परंतु वर्तमान समय में हमारी वास्तविक चेतना तीन गुणों और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण दुखी है ना। अभी क्या हो रहा है कि हम सोच रहे हैं कि शायद ये तीन गुण हमें इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि हम भले टीवी से अलग हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम उसी सुख दुख को महसूस कर रहे होते हैं। वास्तविक तो हमारा जो दोस्त हमारे साथ बैठा हुआ है वो उसी से हमारा नाता है, लेकिन उसकी ओर नहीं ध्यान करते। उसी तरह आत्मा के साथ जो हृदय के अंदर परमात्मा बैठा उधर देख ही नहीं रहा है, बल्कि भौतिक प्रकृति की ओर आकर्षण हो रहा है और इसी में सुख दुख को भोगना चाहता है। और जब हम भगवान के साथ अपना योग जोड़ देते हैं तो फिर वो सुख दुख जो प्रकृति के हैं वो हमें टच नहीं करते। तो वास्तव में क्या समझना है कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट एनी आर्टिफिशियल, इट इज अवर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। वास्तविक हमारा जो पहचान है वो यही है कि हम भगवान के दास संजीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दान, और किसी की नहीं, भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। परंतु उस कॉन्शियसनेस को कैसे जगाते हैं? अब ये हम जब जैसे हर लकड़ी के अंदर आग होती है, सब बोलते हैं ना फायर इज इन द एवरी वुड, लेकिन उस वुड के अंदर, उस लकड़ी के अंदर आग प्रदर्शित नहीं होती है, दिखती नहीं है। तो हम समझते हैं शायद अगर कोई अज्ञानी होगा क्या सोचेगा कि इस लकड़ी का आग से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन जब इस लकड़ी में से आग निकालने के लिए उसको दूसरी लकड़ी के साथ रगड़ा जाता है, जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है उसके साथ जब उसको मिलाया जाता है तो क्या वो लकड़ी भी जलने लगती है। उसी तरह से कृष्ण कॉन्शियसनेस जब भी हम भक्तों के साथ, जो भगवत भक्त होते हैं जिन्होंने अपनी भक्ति, अपना आध्यात्म साक्षात्कार किया होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके संपर्क में जब हम आते हैं तो जो भक्ति की अग्नि हमारे हृदय में है पहले से, ऐसा नहीं है कि वो कोई नई चीज डालेंगे, नहीं, वो खाली उनके संपर्क से वो प्रकट हो जाएगी। तो स्टार्ट में क्या है, भक्ति की विधि क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो सबसे पहले हमें भगवान के विषय में श्रवण करना है और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है और उसके बाद भगवान को स्मरण करना है। ये चीजें हम करते जाएंगे तो आगे खुद ही होगा। लेकिन अगर हम जैसे वो लकड़ी है उसको आप किसी से भी ऐसी लकड़ी से टच नहीं करो, या फिर ना कोई भी अगर प्रयास नहीं करते हो तो कभी भी लकड़ी में से अग्नि नहीं निकलेगी, भले उसके अंदर है। उसी तरह से हमारे हृदय के अंदर भी भगवान की कृष्ण भावना भावित हम हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस है हमारे पास, लेकिन जब तक हम भक्तों का सानिध्य नहीं करते हैं, भक्तों के संपर्क में नहीं आते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करते हैं, कृष्ण कथा नहीं सुनते, भगवद गीता और भागवत महापुराण का श्रवण नहीं करते हैं, तो कभी भी वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को वापिस से डिवेलप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने बताया तात्पर्य में कि जो लोग कृष्ण को भूल गए निश्चित रूप से मोहग्रस्त है। मोह क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? कि मैं कृष्ण से कोई संबंध नहीं है मेरा, बस ये अज्ञानता है। और ज्ञान क्या है? कि मैं दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है और मुझे उनकी सेवा करनी। तो मोह, जो भगवान के साथ अपना योग जोड़ लेते हैं तो वो मोहग्रस्त नहीं होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं वे मोहग्रस्त हो जाते हैं। भगवद गीता में कहा गया है सर्वम ज्ञान प्लवेनम ज्ञानिन सर्व कर्मण तथा नहीं ज्ञाने न सदृशम, कि ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वास्तव में क्या है? वास्तव में भक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान क्यों? कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम भक्ति क्यों करेंगे, है ना? तो इसलिए भगवान यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरा उदाहरण भी दिया साथ में, कि वो ज्ञान है क्या जिसके बराबर और कोई उसके समान और कोई चीज नहीं है। तो श्री कृष्ण के प्रति आत्म समर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तविक ज्ञान क्या है? कि मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण जो भी कर रहे हैं उसमें मुझे पूरी श्रद्धा है कि वो बस कृष्ण को प्रसन्न करना है। मेरा ये कार्य है कि मैं कैसे अपने होने से कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। मैं चाहे जी रहा हूँ चाहे मर रहा हूँ, किसी भी अवस्था में हूँ, मैं क्योंकि कृष्ण का दास हूँ तो मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूँ। तो ये वास्तविक आत्मसमर्पण ही पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा बताया गया
7.19 में कहा गया कि ये चेतना बहुत बहुत जन्मों के बाद प्राप्त होती है। बहुनाम जन्मनामंति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, कि वो महात्मा तो बहुत दुर्लभ होता है जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। और भगवान बताते हैं कि मनुष्याणाम 7.3 में शायद भगवान बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततां अपि सिद्धानां कश्चित् माम् इति सत्यता, कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उनमें से जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है कोई एक मुझे जानता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि अगर वो बहुत रेयर है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाला स्थान है, तो हम ये सोचे कि ये हमारे बस की बात नहीं है। वास्तव में एक जगह श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि हेयर इज नथिंग एनीथिंग इटर्नल एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं, मतलब इटर्नल नहीं है कुछ भी, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ भी इटर्नल नहीं है। यानी जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, जिधर भी आप जा रहे हो, एक दिन सब कुछ जो है वो समाप्त हो जाएगा। रहेगा तो क्या, भगवान का नाम, भगवान का प्रेम, भगवान की लीलाएं और भगवान से संबंधित जो वस्तु नहीं है उसका विनाश हो जाएगा। तो एक न एक दिन जीव को सिद्धि प्राप्त करनी है। जीव की वास्तविक स्थिति है, जीव का रियल ओरिजिनल उसका कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो हमें उसको एनी हाउ जगाना है, वो ज्ञान को एनी हाउ प्राप्त करना है। लेकिन भगवान कभी कभी बोलते हैं कि भाई आसुरी योनि मापन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, कि वो जो असुरी लोग होते हैं वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, वो बारम्बार जन्म मृत्यु के चक्कर में चले जाते। इसका मतलब ये नहीं है, वो भगवान है, वो प्रेम करते हैं। जैसे माता कैसे अपने बच्चों को बोल देती है कि अगर तुमने ऐसा काम किया तो कभी भी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता बोल रही है कि कभी मेरे सामने आना नहीं, बल्कि माता क्या बता रही है कि आप इस काम मत करो। तो उसी तरह भगवान भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान हमें बताते हैं कि देखो तुम्हें दुख मिलेगा, तुम मत करना ऐसा, वरना मैं तुम्हें कभी भी अपने पास नहीं बुलाऊंगा, ताकि जीव लरस जाए कि नहीं अगर मैं ऐसा करूंगा तो कृष्ण की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन कृष्ण बहुत कृपालु हैं, और अगर हम थोड़ा सा भी कृष्ण के लिए, भगवान कहते हैं नेहा भी कमना शोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये भले कितना ही मुश्किल है कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्राप्त करना, लेकिन अब थोड़ी सी भी प्रगति करोगे तो उसी समय मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा और कभी तुम्हें वापिस, तुम खाली इच्छा तो करो, तुम आगे बढ़ने के लिए प्रयास तो करो, तुम्हारा थोड़ा सा भी प्रयास में कभी भी जाया होने नहीं दूंगा, मैं जरूर तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ, भले मैं बहुत ज्यादा मुश्किल से प्राप्त होता हूँ, लेकिन भक्तों के लिए जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, उनके लिए बहुत सुलभ हो जाता हूँ। तो ये ज्ञान है जो केवल एक शुद्ध गुरु महाराज के द्वारा ही प्राप्त होता है, और इस ज्ञान से हर एक चीज जो है वो हमें इस तरह से प्रकट होने लगती है हमारे सामने, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं गुरु और कृष्ण की अच्छी सेवा कर सकूं। आगे भगवान हमें अभी बताएंगे कि जीव किस प्रकार से मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, उसके विषय में हम कल पढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण।